આત્મામાં આત્માથી થાય છે. ધર્મ ક્યાં કરવો છે, કોને કરવો છે? શરીરને કરવો છે કે કોને કરવો છે? શરીર જડ છે એનો ક્યાં દોષ છે? જેમ ગાલ ઉપર ડાઘ લાગ્યો હોય, અરીસામાં દેખાય છે, પેલો ડાઘ કયો સાફ કરશો? શીશે વાલે કો સાફ કરેંગે ને? કોણ સા ડાઘ જો હે કિસકા કોણ સા સાફ કરેંગે? પહેલે મિરર વાલે કા ડાઘ કો નહીં, બાદ મેં કરેંગે. કોણ સા કરેંગે? વહાં ડાઘ હે હી નહીં, ડાઘ તો એક હી જગહ પે. ऐसे ही शरीर में क्या दोष है, वो तो जड़ अजीव तत्व है, अपने विभाव में अज्ञान भाव से हमने प्रकट किया है. तो हमारे लिए आत्मा में जो कुछ करना है वो आत्मा में करना है. तो यहाँ आराधना के पर्व में फिर से आज पांचवें दिन में प्रारंभ कैसे किया था, कि पहले क्रोध से रहित क्षमा, दूसरे दिन मान से रहित मार्ग. कहीं भी बाह्य में हमने प्रतिकूलता देखी तो क्या उत्पन्न होता है? क्रोध होता है. और वहीं हमने हमारे अनुकूल हो गया तो क्या हुआ? मान होता है. तो ये दोनों से रहित क्रोध और मान से रहित क्या करना है? हमारी आत्मा में वितरागता प्रकट हो तो अनुकूलता देख के मान नहीं करना है, प्रतिकूलता देख के क्रोध नहीं करना है, और प्रतिकूलता के समय कोई मायाचार करके असत्य का सेवन भी नहीं करना है. तो आर्जव और सत्य और आज लोभ. पुण्य के उदय में बाह्य में अनुकूलता मिलती है, लेकिन वो नाशवान है, क्षणभंगुर है, अनित्य है. जो पूजा में आया था, नाशवान की कभी भी ममता नहीं होती है. तो ऐसे ये लोभ से रहित सोच, सोच माने पवित्रता. शरीर स्वयं असुचि से भरा हुआ है, बाह्य से शुद्धि करते हैं. ऐसे ही अंतरंग आत्मा की परिणति में विभाव की अशुद्धता भरी हुई है और बाह्य से हम शुद्धि करना चाहते हैं. शुद्धि तो आत्मा के स्वभाव के विरुद्ध जो रागादि भावों की उत्पत्ति, जो यहाँ हमारे पुण्य पाप अधिकार में चल रहा है. गुरुदेव सिंह ने आज कलश टीका निकाल के क्या बताया, ये पुण्य पाप अधिकार का कलश में राजमल जी की कलश टीका में क्या बताया? शुभ राग है वो, चलो आप कहते हो इसलिए मैं मानता हूं, करने योग्य नहीं है. वो भी आप कहते हो तो मुझे अभी भी थोड़ा कठिन लगता है स्वीकार करने में, लेकिन त्यागने योग तो नहीं है ना, करने योग भी नहीं है, और वर्जन योग, वर्जन शब्द था ना, त्याग, त्यागने योग हो गया तो सो हो गया कोई, लेकिन करने योग नहीं. इतना तो अभी आप बहुत कहते हैं इसलिए जबरदस्ती मानता हूं. गुजरातीम कहें शू थे कंठ गड़े बात उतरती नथी ने, तमे क्यों એટલે ના તો ન પડાય. આચાર્ય દેવ કહે રહે, જ્ઞાની કહે રહે, તો હમ મના તો નહીં કર સકતે, લેકિન અંતરંગ મે સ્વીકાર નહીં હૈ. રાજમલ જી ને કહા કે જૈસે વો કરને યોગ્ય નહીં હૈ ઓર વર્જન યોગ હૈ, ત્યાગ નહીં યોગ્ય. એ ભી બાત અહીંયા એસે આયેગી, કરને યોગ્ય નહીં ઓર હો ગયા તો હો ગયા, કોઈ આપત્તિ નહીં, કોઈ દિક્કત નહીં, કરતે જાઓ, કોઈ દિક્કત નહીં, એસે નહીં. ક્યો ક્યો ઉસકે લિયે ફિર તીન શબ્દ દિયા, કોન હૈ? दुष्ट है, घातक है, है वध्य है. आत्मा के स्वभाव का घात करने वाला है. आपको देखना है तो देख सकते हैं, 74 गाथा है समय सार में, 74 नंबर की घातक की जो बात आई ना, इसलिए 6 बोल से आश्रव का वर्णन किया है. 74 गाथा, 139 पेज टीका. पहले दृष्टांत देते आचार्य देव कि वृक्ष और लाख की भांति वध्य घातक स्वभाव होने से आश्रव जी के साथ कैसे बंधे हुए हैं, लेकिन घात करने वाले. आप मालूम नहीं हिंदी में क्या कहेंगे, गुजराती में हम लाख बोलते हैं, पिपड़ के जो पेड़ होते हैं ना, इसमें लाख होता है, इससे क्या होता है वो पूरा वृक्ष नष्ट हो जाता है। ऐसे ही जो आश्रय है रागादि भावे, चाहे सो वो कौन सा हो, शुभ हो या आखिर में 150वीं गाथा में इसके लिए कौन सा शब्द दिया, सामान्य रागपन है। साम दोनों में शुभ हो या अशुभ, दोनों कॉमन पना क्या है दो में, रागपना है। तो कोई भी राग, कोई भी आश्रय आत्मा के ज्ञान चैतन्य स्वभाव का क्या है, वे घातक। घातक राग को हम साधन मानते हैं। गुरुदेव जी ने बताया यदि राग साधन हो तो ये जैन दर्शन वितराग मार्ग कैसे होगा। यदि हमने राग को ही साधन मान लिया तो ये वितराग मार्ग नहीं। जैन दर्शन पूरा क्या है, वितराग, वितरागता पोषक जिनवाणी कहलाती है। तो यहां पूरा हमें लेना है आगे विषय। तो फिर ये 10 लक्षण पर्व में चारित्र की आराधना का ये मंगलमय अवसर है। धर्म कितने प्रकार के है, 10 धर्म की आराधना करते हैं ना 10 दिनों में, नहीं कम करते हैं? नहीं 10 करते हैं ना। 10 धर्म की आराधना के कौन से दिन है, 10 शब्द लक्षण के लिए है, धर्म के लिए नहीं। धर्म तो चारित्र रूप धर्म है, उसके लक्षण ये 10 लिए गए। ऐसे तो बहुत से है लेकिन इसमें मुख्यतः इनके, इसमें वितरागता की चारित्र की प्रणति में क्रोध कसाई का अभाव दिखा तो उसका नाम क्या दिया, क्षमा दिया। मान कसाई नहीं तो मार्दव दिया, इसमें माया कसाई नहीं तो आर्जव दे दिया, असत्य बोलने का ये पाप के परिणाम नहीं तो सत्य के दिया, और लोभ कसाई नहीं तो सोच। बाकी प्रणति तो एक ही चारित्र रूप धर्म की आराधना के ये दिन है, और उसमें लोभ में 2 प्रकार, वर्तमान का लोभ और भविष्य की तृष्णा। भविष्य में हमें कितना संयोग चाहिए या कौन से चाहना कितने हैं, अच्छा ये कोई बाह्य संयोग हो, भविष्य की पर्याय में कहाँ जाना है, कौन सी गति में जाना है, नरक निगोद की या स्वर्ग में जाना, कौन सी गति में जाना है, जाना तो पड़ेगा। इस भव में इतनी साधना नहीं कि आज गुरुदेव ने वो भी एक अच्छा किया। देह से मुक्त कौन होता है, ज्ञानी या अज्ञानी, दोनों होते हैं। देह से मुक्त ज्ञानी होते या अज्ञानी होते हैं, दोनों होते हैं। फर्क क्या होता है, हम जैसे अज्ञानी देह से मुक्त होकर 84 लाख योनि में गुजराती में शू कहने रखड़वा मंड भटकने लिए का होगा, क्योंकि देह का कर लिया था, आयुष काल की मर्यादा होती है, तो देह तो छूटने वाला ही है। जहां राग के प्रति एकत्व किया है, संयोग शरीर में एकत्व किया है तो शरीर ही मिलेगा। और यदि चैतन्य स्वभाव की आराधना की पूर्णता की तो देह छूटेगा, लेकिन उसको मरण नहीं कहेंगे, निर्वाण कहेंगे। और शादी अनंत समाधि सुख में विराजित होने के लिए सिद्ध दशा में विराजमान होंगे। तो यहां यह बताते पहले तो सोच धर्म पवित्रता, स्वभाव से विरुद्ध कोई भी भाव को मलिनता अशुद्धता अपवित्रता कहेंगे। स्वभाव से विरुद्ध, मेरा क्या स्वभाव है, मैं चैतन्य स्वभाव, आनंद स्वभाव, वितराग स्वभाव, अकसाय स्वभाव, उपशांत शांत स्वभावी, अणु मात्र भी राग मेरे में स्वरूप में नहीं है, और जो यदि राग उत्पन्न होना वो महाविपरीतता है। तो इसे सोच धर्म की आराधना के दिन मुनिराज ने तो मुनिराज हर रोज कितनी बार स्नान करते होंगे, कितनी बार करते, एक बार भी नहीं, कितने महीने के बाद, चलो कितना दिनों के बाद, फिर शरीर में से क्या आती होंगी, नहीं 2 बार तो मिनिमम नहावू जोइए, कि रात ना सुता पहला पण नहावू जोइए ना, नहीं तो कितनी बार नहावू जोइए, कितनी बार स्नान करना चाहिए दिन में, अरे आत्मा की पवित्रता को भूल के स्वयं जो असुचि से भरा है उसको हम पवित्र करना चाहते हैं। स्वयं स्वभाव से शरीर में ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप पवित्र कह सकेंगे? लौकिक बात में भी, अरे वहां कोई हड्डी आदि होते उसका स्पर्श हो जाता है, क्या करते हैं? गलती से भी स्नान कर लेते हैं। स्वयं असुचि से भरा हुआ है उसको हम पवित्र करना चाहते हैं, और जो चैतन्य पवित्रता से भरा हुआ है इसकी तो स्वीकार ही नहीं करते, उसके लिए तो कोई प्रयत्न भी नहीं करते। तो ये पवित्रता के दिनों में हमारी प्रणति में पवित्रता हो ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। काल चला जाएगा, पर्व पूर्ण होगा, प्रणति में क्या प्रकट हुआ ये सोचना है। आता है ना, साल में कितनी बार आता है? 10 लक्षण पर्व 3 बार आता है ना, कौन से माह? अरे इसमें क्या है, 3 बार ही आता है, 10 दिन दिन का होता है, माघ महीने में, चैत्र महीने में और भादो में, और दूसरे दिन में क्या होता है, आराधना का, धर्म के दिन नहीं होते हैं ना। साल भर में कितने दिन आता है धर्म के? चलो इसमें अष्टानिका ऐड कर ले, तो अष्टानिका भी कितनी बार आती है? कार्तिक, फाल्गुन और अषाढ़, इनके 24 दिन और इनके 30 दिन। पूरे साल भर में कितने दिन करना है हमें? 54 डेज करना है, बाकी तो फिर से मेरा श्वास रुक जाए तो मुझे स्वीकार्य है, मुझे धर्म की आराधना करते हैं। इतनी जिसके जीवन में जरूरत लगेगी तो ही एक कार्य की सिद्धि होने वाली है, नहीं तो ये महापुण्य के योग्य से मनुष्यपना, मनुष्यपने में भी जैन कुल में और उसमें भी सच्चे देव शास्त्र गुरु को योग में कुछ तत्व समझने का हमारे पास अवसर है। क्षोभम भी है, योग भी है, और हम वंचित रह जाए तो हमारे जैसा अभागी कौन होगा? ऐसा योग मिला वो सबसे बड़ा सौभाग्य है, और यदि परिणमन नहीं हुआ तो हमारे जैसे कल गुरुदेव सिंह ने प्रवचन में दिया था, किसी के पास माला रत्नों की हो और उसका धागा चाहिए तो क्या करता है? पूरा हार जो है रत्नों का वो क्या करता है? तोड़ा। बुद्धिमानी होगी ना, ये तो नहीं, पर क्या करे, धागा चाहिए। अरे धागा चाहिए तो ये रत्नों का हार क्यों तोड़ता है? तो फिर उसको गुजराती में सो के राख, राख में आप क्या समझते है? एस जो होता है ना इंग्लिश में जिसको बोलते, हिंदी में क्या बोलते, समझते ना, लकड़ी है, भस्म। चलो हिंदी में के बीजू भस्म समय, हाँ भस्म। किसी को भस्म की चाहना हुई तो वो क्या करता है? रत्न को जला डालता है। अच्छा कार्य किया ना जी। और तीसरा कौन सा दृष्टान? ये सब किसने दृष्टान दिया? जयसनाचार्य देव ने दिया, कल याद क्या था गुरु? और तीसरा कौन सा दृष्टान था? किसको एक सामान्य चावल के माने चाहिए तो उन्होंने किसके पेड़ को कट डाला? चंदन का वन था, पूरा काट डाला, और उसमें फिर क्या उनको खेती करनी थी? चावल की। ये तीनों बुद्धिमान है ना, नहीं मुझे जरूरत है तो क्या करूं मैं? ऐसे ही जो अपने चैतन्य तत्व की वितरागता की आराधना नहीं करता है और पुण्य पाप में ही उलझ रहा है, वो ऐसे ही हम अज्ञानता के वश प्रवृत्ति करते हैं। ये पूरा हमें अवसर मिला है साधना करने की है। यहाँ हमारे विषय पे चलो फिर से आ जाए, पुण्य पाप अधिकार। कहाँ तक गुरुदेव जी के प्रवचन में हम पहुंचे? 150 गाथा, इसके बाद 103 नंबर का श्लोक। और 150 गाथा में क्या विषय आया हम समझ ले फिर से। अधिकार की पहली गाथा कौन सी है? 145। 145 गाथा से ये अधिकार शुरू हुआ ना, 6 गाथा में क्या विषय आया चलो फिर से पढ़ ले। एक 145 गाथा के ऊपर क्या लिखा है? अब शुभाशुभ कर्म के स्वभाव का वर्णन गाथा में करते हैं, मिला। अब शुभाशुभ कर्म, फिर से शुभाशुभ कर्म है कौन लेना? भाव कर्म, द्रव्य कर्म सभी ले लेना, उनका स्वभाव फिर से। तो उनका स्वभाव क्या बताया? उनका स्वभाव क्या है? शुभाशुभ कर्म का स्वभाव क्या है? बंधन करता है, संसार में ही ले जाता है, दाखिल करता है ना। जो कोई भी हो, शुभ हो या अशुभ, दोनों कहां ले जाएगा? संसार परिभ्रमण में ही। और चारों गतियां किसका फल है? शुभाशुभ भाव का। चारों गति शुभाशुभ। और सही मानने में जीव के लिए तो मुख्य दो ही स्थिति है। कौन सी दो स्थिति? यदि मिथ्यात्व का सेवन करते हैं तो अंततः निगोद में, और यदि स्वभाव की साधना करते हैं तो सम्यक्त्व का फल सिद्ध दशा है। ये तो चारों गतियां कैसी है? जैसे टेम्पररी हो, धर्मशाला में रहते नहीं, धर्मशाला में तो यात्रा में के निकलते तो धर्मशाला में रहते हैं ना, तो धर्मशाला में कितने सालों तक रहते हैं? कितने सालों तक? एक दो दिन रहो, वहां भी तो टाइम तो इतना ही मिलता है अपने, तब बहुत नहीं, माँ मुश्किल से दो चार दिन निकल दे। कभी सोचा है गुरुदेव जी के साथ में यात्रा का संग कितने महीने का होता था? सुना है नहीं सुना है? छह छह महीने के, ये बंबई से गुरुदेव जी शिखर जी पहली बार निकले थे, और इसमें तो करीब कितने होता, 30-40 लोग हो ही होंगे, नहीं कितने थे? निवृत्ति योग भी नहीं मिलता है, इतनी बाह्य प्रवृत्ति में उलझे हुए हैं, फिर भी ये कम से कम बाह्य तीर्थ क्षेत्रों, निर्वाण क्षेत्रों की यात्रा के लिए भी निवृत्ति नहीं है। यहाँ तो सर्व प्रकार के विकल्पों से निवृत्ति लेनी है, ये पुण्य पाप अधिकार है। तो यहाँ फिर से उनका स्वभाव कि कोई भी शुभाशुभ भाव से चार गतियां ही मिलेगी, और चार गतियां है इसमें परिभ्रमण शब्द देते हैं। क्यों परिभ्रमण? इसमें कहीं स्थिरता नहीं है, एक गति के बाद दूसरी तीसरी ऐसे परिभ्रमण चलता ही रहता है, और उसे चारों गति में परिभ्रमण के साथ क्या कर रहे हैं? भटकते हैं। भटकते समझते हैं? भटकते माने क्या? कोई हमारा निश्चित स्थान नहीं है। ये मनुष्य पर्याय पूर्ण हुई, हमारे लिए कितने ऑप्शन खुले हैं? 84 लाख योनि में जा सकते हैं। जैसे कोई हवा आई, इसमें कोई कागज का टुकड़ा हवा में गिरता है, वो कहाँ जाके गिरेगा? तिनका उड़ता है, कहाँ जाके गे? ऐसे ही चारों गति में शुभाशुभ भाव के फल में कहाँ हम दूसरे भाव में जाएंगे ये पता नहीं। तो ऐसा ये शुभाशुभ भाव कहाँ शब्द दिया है? संसार में ही दाखिल करते। इसका थोड़ा विस्तार करने के लिए अमृत चंद्राचार्य देव ने चार बोल लिए। चार बोल कौन से लिए? सब बात हो गई है, हेतु, स्वभाव, स्वाद और आश्रय, चार प्रकार लिया था। इसमें जो पुण्य पाप की प्रकृति बनती है, जिसके फल स्वरूप बाय में अनुकूल प्रतिकूल सामग्री मिलती है, और उसके कारण तीन प्रकार आएगा। हेतु में कौन आएगा? शुभाशुभ परिणाम, फिर प्रकृति स्वयं द्रव्य कर्म, और उसके फल में स्वाद में क्या लेंगे? नो कर्म। इसमें जो भी प्रकृति पुण्य की या पाप की बनती है, इसके कारण में हेतु में कौन है? शुभाशुभ भाव, जीव के परिणाम। आज इसमें इसलिए देखा था आपने, 103 नंबर के श्लोक के बाद 104 नंबर के श्लोक में शब्द क्या आएगा? देख लेते 104 नंबर का श्लोक, 150 गाथा के बाद 104, 243, पेज नंबर 243, आचरण शब्द आया। आचरण माने क्या होता है? जीव के परिणाम। ऐसे नहीं समझना कि द्रव्य कर्म, ऐसे नहीं है शब्द। शुभ आचरण रूप कर्म और अशुभ आचरण रूप कर्म आया शब्द। तो आचरण किसमें होगा? जीव की परिणति में। तो यहां भाव कर्म, तो जो भी पुण्य पाप की प्रकृति बनती है, इसमें हेतु कारण निमित्त कौन है? शुभाशुभ भाव, भाव कर्म है। वो दोनों कैसे हैं? एक शुभ भाव अच्छा है, दूसरा अशुभ भाव बुरा है। बोलू या बहुत सहलू से અને કાલથી નહીં આવે પૂજામાં તો કહેશે ને કેમ નથી આવતા, કારણ કે અમે છે ને માયના પુણ્ય અને પાપ તો તમે બે સરખા કહેતા હતા એટલે અમે નથી આવતા, ઘરમાં અમે ટીવી જોતા હતા, છાપું જોતા હતા, નહીં તમે જ કીધું હવે. ફરીથી ક્યારે પણ સ્વચ્છંદતા સેવવી નહીં, પોતાના આત્માને ઠગવો નહીં. કુંદકુંદ આચાર્યદેવ, અમૃતચંદ્ર આચાર્યદેવ પુણ્યને પાપને સમાન કહે છે, એ પાપમાં જવા માટે કે બેને છોડીને સ્વભાવમાં જવા માટે. અને પુણ્યને પાપને સમાન માનનાર પુણ્યને છોડશે અને પાપ કરશે તો સમાન ક્યાં માયના, સમાન માના તો કભી હમ માનેંગે, દોનો કો ત્યાગ કરના યા દોનો કા ગ્રહણ કરના, લેકિન એક કા ત્યાગ ઓર એક કા ગ્રહણ તો સમાન કહા માના. જિસકા ત્યાગ કરતે ઉસકા નામ ક્યા આતા હૈ, નામ ક્યા દિયા જાતા હૈ, હે કહા જાતા હૈ. જિસકા ગ્રહણ કરતે ઉસકા નામ ક્યા દિયા જાતા હૈ, ઉપાદે. તો આપને સમાન તો નહીં માના, આપને કહા પુણ્ય છોડ કે મેં તો પાપ કરૂંગા, તો ક્યા કહા પુણ્ય કો હમને ક્યા માના, હે, ઓર પાપ કો ક્યા માના, ઉપાદે, સમાન કહા માના. જગત મેં કમ સે કમ ઇતના તો સ્વીકાર કરે. એક તીસરા શબ્દ ઓર કોણ સા હોતા હૈ, હે ઉપાદે, ઓર તીસરા ગે, ગે કોણ હૈ, ગે કોણ હૈ, સબ સબ માને કોણ, જો ભી બાય નો કર્મ આદિ વો સબ જ્ઞાન કે ક્યા હૈ, ગે, ગે કિસે કહેતે હૈ, ગ્રહણ કરને યોગ યા ત્યાગને યોગ, ઇસમે જાનને યોગ મે ભી વો ત્યાગને યોગ હોતે યા ગ્રહણ કરને યોગ હોતે, દોનો હોતે હૈ ને, યે દોનો હો સકતે, ત્યાગને ભી હો સકતે ઓર ગ્રહણ કરને યોગ ભી હો સકતે. નહી મન લાગે આવા પ્રશ્ન બહુ પૂછીને હું કામ તે હેરાન કરો છો ને, એની કરતા સીધું જે ચાલવું ચલાવી દેવું છે. તત્વને બહુ જ ઊંડાણથી વિચારવાની જરૂર છે, સાંભળવાનું કરીએ છીએ પણ તત્વના ઊંડાણ સુધી પહોંચવાનો આપણે પ્રયત્ન કરતા નથી. તત્વનું ઘૂંટણ, તત્વની વિચારણા જીવનના કરશું તો હિત અહિતનો ખ્યાલ આપણને આવ્યા વગર રહેશે. કભી ભી ગે ત્યાગને યા ગ્રહણ કરને યોગ નહીં હોતે, યદિ ત્યાગને હોગી હોય તો ઉસકા નામ હે હો જાયેગા, ઓર ગ્રહણ કરને યોગ હોગા તો ઉસકા નામ ઉપાદે હો જાય. ગે માત્ર ક્યા હૈ, માત્ર જાનને યોગે, ન વહા હિતપના ન વહા અહિતપના. તો પૂરા જો નો કર્મ સંયોગ એવો કેસે હૈ, ગે માત્ર હૈ. તો અહીંયા ફિર સે યે પહેલે બોલ મે દેખે પડતે હૈ કે જો કર્મ કી પ્રકૃતિ બનતી હૈ પુણ્ય કી યા પાપ કી, ઇસકે કારણભૂત કોણ હૈ, નિમિત્તભૂત કોણ હૈ, શુભાશુભ ભાવ, ભાવ કર્મ, વો દોનો કેસે હૈ. અમૃત ચંદ્ર આચાર્ય દેવ ને ઉસકે લિયે કોણ સા શબ્દ દિયા, 237 પેજ પે 145 ગાથા ઉસકા દૂસરા પેરેગ્રાફ ટીકા કા, 237 પેજ ઇસમે લાસ્ટ પેરેગ્રાફ હૈ ને, ઇસમે પહેલે શુભ યા અશુભ જીવ પરિણામ મિલા હૈ શબ્દ, ગુજરાતી હોંગે ના લેકિન આપ હિન્દી હૈ, અચ્છા અચ્છી બાત, શુભ કે અશુભ પરિણામ જીવ પરિણામ. ફિર આગે શબ્દ ક્યા હૈ, કેવલ, કેવલ માને ઓનલી, અરે વાહ, ઇંગ્લિશ કે ક્યા, કેવલ કા દૂસરા શબ્દ ક્યા, કોઈ બાત નહી, માત્ર, માત્ર માને ક્યા, સત પ્રતિશત, અંશ માત્ર ભી દૂસરા કથનચિત નહીં, કેવલ માને માત્ર માને ઓનલી કહો, માને સત પ્રતિશત કેસે હૈ, અજ્ઞાનમય હોને સે શબ્દ આયા. કિસકો કહેતે હૈ આચાર્ય, અજ્ઞાનમય શુભ ઓર અશુભ, ઓર એક સિમ્પલ લોજિક હૈ, અજ્ઞાનતા મેં ક્યા હોગા, અહીત હી હોગા. સામાન્ય લૌકિકતા મેં ભી કહે ને, જ્ઞાન હોગા તો હમ કહી નહીં ઠગે જાયેંગે, ઓર અજ્ઞાન હોગા તો ક્યા હોગા, ઠગે જાયેંગે. તો કેવલ દોનો પરિણામ, કોણ દોનો પરિણામ, શુભ યા અશુભ, માત્ર ઉસમે ક્યા પડા હૈ, અજ્ઞાનપના હી હૈ. ઇસલિયે કેવલ, ઓર કેવલ કે અલ્ટિમેટ ઉન્હોને ક્યા રિઝલ્ટ દિયા, એક હી હૈ, હે શબ્દ આગે કોણ સા દિયા, કેવલ, ઓર અંતિમ મેં ક્યા સિદ્ધ ક્યા, એક, ક્યોંકિ દોનો સમાન હૈ, સમાન હોને સે એક હૈ. કહી ભી પુણ્ય ઓર પાપ મેં હિના દિખતા મત માનના, દોનો ભાવો સે संसार ही मिलता है, गति ही मिलता है, भाव मिलता है, संयोग मिलता है। तो पुण्य और पाप दोनों अज्ञानमय, इसमें कहीं भी चैतन्य का अंश नहीं है, ज्ञान का जानने का सामर्थ्य इसमें है नहीं है, इसलिए दोनों कैसे है, एक ही है। पहली बात हुई। एक इसकी बात आई कि जो पुण्य और पाप की प्रकृति है उसके कारण में भी क्या है, समानता है, तो उसके कार्य में फल में भी समानता होनी चाहिए। आपने दो बीज नीम के बोए हैं, तो उसका पेड़ कौन सा होगा, एक एक आम का होगा और एक नीम का होगा। नहीं नहीं, ये जो एक उसमें बीज था उसको अच्छा फर्टिलाइजर दिया, अच्छी रीत से आपने वाटरिंग किया, तो एक नीम के बीज में से कौन सा वृक्ष आएगा, आम का आएगा मीठे, और दूसरे में क्या आएगा, पक्का नहीं, ट्राई करेंगे एक बार, पक्का। कारण सदस्य कार्य, क्या नियम है, कारण सदस्य माने इसके जैसा ही, जैसा कारण ऐसा कार्य। तो यहां कारण कौन आया, शुभाशुभ भाव, कैसे आया, अज्ञान में आया, तो उसका फल भी कैसा होगा, समान होगा। इसलिए पुण्य और पाप कैसे है? समान है। हमारे एक पुण्य का पक्ष छोड़ाने के लिए आचार्य ने कितना लॉजिक से प्रूव किया है। फिर दूसरा, चलो अभी ले, चलो आपने बताया कि कारण में तो एक है लेकिन दो में तो फर्क है कि नहीं, पुण्य की पाप की प्रकृति उदय आवे, पुण्य का उदय आए तो क्या हो, जस कीर्ति का उदय आए तो क्या होता है, क्या नहीं होता है, कुछ तो होता है, हाँ, तो क्या होता है, जस कीर्ति का उदय आता है तो क्या होता है, इतनी प्रशंसा होती, खोटे काम करे तो भी जगत में प्रसिद्धि होती है, होती है ना, तो अच्छा है ना। और पाप की प्रकृति का उदय हो, हम सही माने होनेस्टी प्रामाणिकता से नीति न्याय से करे तो भी जगत में क्या होगी, निंदा होगी ना। अब जस कीर्ति का फर्क तो पड़ता है कि नहीं, फर्क तो पड़ता ही है, एक प्रशंसा करे एक निंदा करे, फर्क तो पड़ता है कि नहीं, मान का सही कि नहीं, बाहर में तो फर्क है कि नहीं, नहीं। हमारा जस कीर्ति का उदय हो तो दो चार लोग पूछने को भी आए, और गुरुदेव जी ने बोला था सब आपको नहीं ध्यान में आया, देव पर्याय में कोई अब जस कीर्ति का हो कुछ बोलने को खड़ा हो जा बैठ जा तो ऐसे ही सिर, और जिसका जस कीर्ति का उदय वो मौन हो तो भी क्या कहेंगे, आप जरा बोलिए कुछ बोलिए, फर्क पड़ता है कि नहीं, जरूर पड़ता है कि नहीं। आचार्य देव कहते तुमने उसको ज्ञेय माना है, यदि ज्ञेय माना है तो इसमें है उपाधिपना क्यों करता है, हम सही मानने में ज्ञाय को तो सही रूप से समझते नहीं, ज्ञेय को भी यथार्थ रूप से समझते नहीं, ज्ञेय में भी हम क्या करते हैं, डिवीजन भेद कर डालते हैं, ये ज्ञेय अच्छे है और ये ज्ञेय बुरे है। अरे अस्थिर सही मानने में ज्ञेय को तो ज्ञेय रूप से स्वीकारे हम, कि जहां न इष्टपना है न, और इष्ट अनिष्ट की कल्पना गई तो राग द्वेष का जन्म ही नहीं होगा, और राग द्वेष का जन्म नहीं तो परिभ्रमण कहां से होगा। तो कम से कम यहां जो भी कर्म की प्रकृति है वो उनका स्वभाव कैसा है, चलो वो भी पढ़ते हैं, यहाँ 237 पेज में जो लास्ट पैराग्राफ है ना, अभी उसकी दूसरी लाइन, शुभ या अशुभ पुद्गल परिणाम, मिला दूसरी लाइन, उसमें क्या था पहले दिया था, शुभ अशुभ जीव परिणाम थे, अभी यहाँ कौन सा आया, शुभ अशुभ पुद्गल परिणाम। एक इसकी बात चलती है, द्रव्य कर्म जो पुण्य पाप की प्रकृति बनती है 148 में से सब होती है ना, कोई पुण्य तो ये कैसा है, पुद्गल के परिणाम, और वो कैसे है, कथनचित पुद्गलमय होने से, उसमें भी केवल लिखा है, उसमें भी नहीं, कोई जो प्रकृति होती है पुण्य की प्रकृति वो कथनचित कैसी होती है, जीवमय, और कथनचित पुद्गलमय, जिस जो परिणाम हो वो परिणामी से तादात्म्य होता है, जगत में जो भी परिणाम होता है वो आया, कुछ ऐसा कुछ आया था कहीं, कहाँ आया था, अब बधु केटलो याद राखी हो, मांड मांड अहिया सुधी, देखिए पेज नंबर 155 गाथा निकालिए, 85 गाथा पेज नंबर 155, टीका नीचे से दूसरी लाइन 155 पेज नीचे से दूसरी टीका। प्रथम तो मिला शब्द, प्रथम तो माने पहले ये पक्का कर तो आचार्य देखे। प्रथम तो ये सिद्ध क्या करते है, जगत में जो क्रिया है, शब्द मिला, जो भी क्रिया, जो भी क्रिया माने कौन सी, चाहे सो चेतन की क्रिया हो चाहे सो जड़ की क्रिया हो, कोई भी क्रिया है वह वे सभी परिणाम स्वरूप होने से वास्तव में परिणाम से भिन्न नहीं है। पहले सिद्धांत, परिणति किससे अभिन्न है, परिणाम। पहले सिद्धांत, जो भी परिणति है, जो भी क्रिया माने परिणति, जो भी क्रिया है वह सभी कैसे है, परिणाम स्वरूप होने से वास्तव में परिणाम से भिन्न नहीं। एक पॉइंट। अभी दूसरा, परिणाम भी परिणामी द्रव्य से भिन्न नहीं। आ गया दूसरा सिद्धांत, आ गया। पहला सिद्धांत कौन सा दिया, परिणति है, क्रिया है वो परिणाम से भिन्न नहीं, और जो भी परिणाम है, फिर से कौन सा परिणाम लेना, उद्गल का लेना या चेतन का लेना, जड़ का या रूपी या अरूपी का, शुद्ध या अशुद्ध, कोई भी जो परिणाम है वो परिणामी द्रव्य से कैसे है, भिन्न नहीं है, क्योंकि परिणाम और परिणामी अभिन्न वस्तु है, परिणामी माने द्रव्य है, शब्द दे दिया। तो ऐसे ही अहिया कौन सा लिया, परिणाम, पुद्गल परिणाम। तो पुद्गल परिणाम किससे अभिन्न है, पुद्गल द्रव्य से अभिन्न है, इसलिए पुद्गलमय होने से एक है। किसकी बात आई, द्रव्य कर्म, इसमें कौन सी, पुण्य की प्रकृति हो या पाप की, दोनों पुद्गल परिणाम किसमें तादात्म्य है, किससे तन्मय है, पुद्गल से होने से, दोनों कैसे है, पुद्गल ही है। हम इसमें भेद करते आचार्य के, देख ले इसमें क्या फर्क पड़ता है, नहीं बाय में तो कोई कहे ना, जो कार्बन होता है ना, कार्बन तो कोयला भी क्या है, कार्बन, और डायमंड भी क्या है, वहां तो मान लेते हैं, वहां तो केमिस्ट्री में सिखा है तो मान लेते हैं। अहिया आचार्य दे कैसे, कोई भी प्रकृति हो, ये द्रव्य कर्म की पाप की हो या पुण्य, दोनों कैसी है, पुद्गलमय होने से एक ही है। ये दूसरा बल कौन सा आया, स्वभाव का, पहले कौन सा आया था, हेतु कारण निमित्त का, अभी तीसरा बोल कौन सा है, स्वाद, स्वाद माने उसका जो विपाक से माने नौ कर्म है, इसके लिए उसका वेदन होता है, इसके लिए स्वाद की बात नहीं है, तो वो कौन सा है, नौ कर्म है, बाय में अनुकूल प्रतिकूल सामग्री आदि सब मिलती है, उसके लिए भी चलो अभी उसमें ही पढ़ते आगे। शुभ या अशुभ फल रूप से होने वाला विपाक मिला, फिर से उसमें ही आगे 237 पेज पे, 237 पेज पे जो चलता था पहले, फिर से पहले में क्या लिया, इसलिए एक ही है शब्द आया था, फिर दूसरा भी क्या लिया, एक ही है, दूसरा भी आया, अभी तीसरा, शुभ या अशुभ फल रूप से होने वाला जो विपाक बाय में नौ कर्म, वो फिर से शब्द कौन सा दिया, केवल, तीनों में केवल शब्द दिया है, और उसके फल स्वरूप क्या सिद्ध किया, इसलिए एक ही है, ही है, क्यों एक ही है, शुभाशुभ भाव कर्म दोनों अज्ञान में क्यों है, क्योंकि केवल अज्ञान में है, जो प्रकृति बनती है वो पुद्गल में क्यों है, क्योंकि केवल पुद्गल के परिणाम है, और अभी तीसरा, ये सभी विपाक है वो पुद्गलमय होने से एक है, और एक होने से कर्म के अनुभव में बाद में फल में कुछ भी भेद नहीं है, इसलिए कर्म एक ही है। ये तीन सिद्ध करके अभी चौथा कौन सा है, चौथा दलील करता है कि जो पाप है वो बंध मार्ग में होता है और पुण्य कहाँ होता है, मोक्ष मार्ग में, बरोबर। अरे पुण्य है तो कहाँ होगा, 28 मुड़गुल आदि होते हैं वो कहाँ होता है, मोक्ष मार्ग में होता है ना, 28 मुड़गुल, अणुव्रत के विकल्प, 28 मुड़गुल के विकल्प कहाँ होता है, मोक्ष मार्ग में होता है ना, मोक्ष मार्ग में नहीं है वे, मोक्ष मार्ग में चारित्र के पुरुषार्थ की अल्पता होने से अस्थिरता के राग में वो बंद है। शुभ भाव किसी का, किसका शुभ भाव, बंद मार्ग में ज्ञानी का या अज्ञानी का? जो शुभ राग है वो किसके लिए बंद मार्ग है, ज्ञानी के लिए या अज्ञानी के लिए? दोनों के लिए समान रूप से, फर्क तो पड़ता है ना। स्वभाव कभी बदलता नहीं, कोई बच्चा अग्नि में हाथ डाले या हम डाले फर्क पड़ेगा ना? नहीं, बच्चे के लिए एक्सेप्शनल रहता है, उसको पता नहीं है इसलिए उसको जलन नहीं होगी। नहीं, उनको पता है ना, बेचारा छोटा है उसको तो पता ही नहीं अग्नि में डाले इसलिए उसको कोई जलन नहीं होगी, और हम डालेंगे तो होगी, ऐसा होता है ना? क्यों नहीं, क्यों नहीं? अग्नि का स्वभाव है, इससे कुछ फर्क होने वाला आपको पता हो या ना हो आपका प्रॉब्लम है। अग्नि का कार्य तो क्या है, जलाने का ही। ऐसे ही आप कहीं भी बाह्य संयोगों में एकत्व किया तो अवश्य बंद होने वाला है, वो सभी पुद्गल के परिणाम में बंद के अलावा कुछ है नहीं। इस प्रकार सिद्ध करके 145 गाथा में, इसमें 146 गाथा में अभी लेते हैं, देखो थोड़ा टाइटल भी पढ़ ले उसका 146। अब शुभ अशुभ दोनों कर्म अविशेष रूप से बंद के कारण है। चलो यहाँ एक्स्ट्रा क्या लिया अभी कुछ, 145 गाथा और 146 में क्या फर्क लिया, क्या फर्क किया गया? आपने बता दिया कि ये सभी पुण्य और पाप कैसे है, बंद के ही कारण का स्वभाव बताया ना, स्वभाव इससे क्या होने वाला है, बंद ही होना। तो किसी का प्रश्न, चलो बंद तो होगा लेकिन दोनों में फर्क तो होगा कुछ नहीं, कुछ फर्क तो लगता होगा ना। पुण्य से जो बंद होता है वो अच्छा होता है और पाप से जो बंद होता है वो बुरा होता है, फर्क तो होता है ना दोनों में। अहिया छे ने बोलवू बहु सहेलू छे, रियालिटी में आप खबर पड़ते, नरक में जासु तो सु थासे, नरक में जाएंगे तो क्या होगा, दुख होगा सुख होगा, दुखी होगा ना। नरक में जो जाते वो सभी दुखी होते हैं ना। नरक में संयोग है, संयोग में जुड़ेंगे इतना दुख होगा, संयोग से दुख नहीं होता है, संयोग में जितना एकत्व करते हैं ममत्व करते हैं इतना दुख होता है, संयोग से कुछ नहीं होता है। अग्नि में हाथ डालेंगे तो जलन होगी, अग्नि से कुछ नहीं। इसे तो यहां ऐसे कहते कि अविशेष रूप से, याद रखना कि पुण्य या पाप दोनों से क्या होता है, अविशेष रूप से बंद होने वाला है। और इसलिए कुंदा कुंदा आचार्य देव ने स्वयं कौन सा दृष्टांत निकाला, बेड़ी का, लोहे की हो या सोने की, बेड़ी जो होती, बेड़ी बोलते हैं हिंदी में, बेड़ी का काम क्या है, मुक्त करने का, मुक्त रूप से घूमने का, बांधना माने क्या, बांध बेड़ी बांधती है, बांधते माने क्या, बंधन माने क्या, बंधन माने स्वभाव की ऊपर घात। जैसे पंखी होता है ना, पंखी बोलते हैं ना, उसके जब पिंजरा होता है उसके लिए कौन सा पिंजरा अच्छा है, सोने का या चांदी का या लोहे का, क्यों समान है? अरे इतना सोने का तो अच्छा लगता है, हमें भी सोने अच्छा लगता है ना, इसलिए तो पहनते हैं ना। क्या सोने का पिंजरा अच्छा नहीं लगता है, क्यों नहीं अच्छा लगता है? अब बंधन से क्या हो, लेकिन बंधन में भी तो अच्छा लगता है ना, कोई देखेंगे अरे वाह कैसे सोने के पिंजरे में, इसमें बुराई क्या है? स्वभाव का घात, कभी सोचते नहीं। जो पक्षी पंखी है उसका स्वभाव क्या है, उड़ना, मुक्त रूप से गगन में उड़ना उनका क्या है, स्वभाव। और उस स्वभाव का क्या होता है, पिंजरे में बंद होने पर क्या होता है, घात। स्वभाव का घात वही बंधन, और बंधन निश्चित रूप से सर्वदा दुखमय होता है। तो यह आचार्य देखे तू सोने की और लोहे की बेड़ी में अंत तो क्या होता है, तेरा स्वभाव का घात होता है। तो ऐसे ये पुण्य और पाप से संसार मिलता है, गति मिलती है, तू अपने मुक्त स्वभाव की प्राप्ति करके सिद्ध दशा में विराजमान नहीं होता। इसलिए दोनों फिर से, पहले क्या बताया, पुण्य पाप का क्या है, स्वभाव, क्या स्वभाव है, बंद करना, कैसा बंद करना, अविशेष रूप से बंद करना, ये बात हमें इसमें 146 सिख यात्रा में बताई, और इसलिए therefore 147 में गाथा क्या है, दोनों का निषेध करना। तीन गाथा बराबर आ गया, पहले क्या सिद्ध किया 145 गाथा में, दोनों का स्वभाव शुभ या अशुभ दोनों का स्वभाव क्या है, बंद करना, बंद करना। दूसरी 146 में क्या बताया, समान रूप से बंद करना, और therefore 147 गाथा में क्या कहते हैं, इसलिए हम दोनों का निषेध करते हैं। कथनचित किसका निषेध, दोनों का, दोनों निषेध माने छोड़ने योग्य है। और ये सिद्ध करके फिर कुंदकुंद आचार्य देखो एक और करुणा आ गई कि इतना सिद्धांत से वो नहीं समझेगा तो चलो हम उसको दृष्टांत देते हैं। तो 148 और 149 गाथा में वो दृष्टांत देते हैं, और 150 गाथा में, चलो एक और एक्स्ट्रा के आज चला ना, तो 150 गाथा में क्या बताया, हम यहाँ लॉजिकली प्रूव किया इतना ही, सर्वज्ञ की वाणी में आगम में भी ऐसा कहा है, आया सर्वज्ञ ऐसा कहा है ना, कुंदकुंद आचार्य ने किसकी साक्षी दी, ऐसा जिनो वदेश है ना, जिनो वदेशो, जिनवर के उपदेश में आया है, तमा तमा माने देरफोर, कमेशु मा रज बोल गया था मैं, इसका अर्थ क्या है, माँ माँ माने निषेधात्मक होता है, तू कहीं भी कर्मों में प्रीति मत करना, राग मत करना। इस प्रकार से हमें पहले पुण्य पाप बंध के कारण, अविशेष रूप के बंध के कारण, इसलिए निषेध करने योग्य है। और ऐसा न्याय से सिद्ध किया, ऐसा नहीं वेदन में तो आकुलता आती, ऐसे नहीं जिनेन्द्र देव ने अपनी वाणी में भी दोनों का ये निषेध किया, इसलिए तुम कहीं भी राग में एकत्वपना मत करना। और उसका विषय फिर आगे लेते।